ताकत वाले पहुंच गए पहाड़ों को अपने उंगलियों से पूरे थे और उनसे खोद डालते थे, ऐसे ताकत वाले कौम थे। जब नबी ने इनको बात समझाई, तो उन्होंने आगे पीछे किया तो कहा कि आप ऐसा ना करो, अल्लाह का अज़ाब पकड़ लेगा। तो उन्होंने बरकसा ये बात कही, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमको कौन डरा सकता है, हमको कौन हरा सकता है, हमसे ज्यादा कोई ताकत वाला है। ये जुमले उनके निकले किस पर? अल्लाह ने जो ताकत दी थी उसी ताकत पर वो जुमले निकल गए। नेमत है, लेकिन नेमत अल्लाह से गफलत में ले आई उनको। कोई एक कौन मालदार है, मालदार तो मालदारी में उनको मालदारी का पर्दा उनको अल्लाह से गाफिल कर गया, अल्लाह ने उनको मालदार बनाया था। और मैं शायद तिजारतों में थी, तिजारत में तो उनके तिजारत का माहौल उनको अल्लाह से गफलत में डाल दिया। किसी को अल्लाह ने हुकूमत दी तो हुकूमत का नशा, उसने दावा कर दिया कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। फिर जब कुर्सी बड़ी हो गई तो उसके बोल बदल गए। इंसान जो है अपनी फितरत के अतबार से ऐसा ही कमजोर है। अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, हमने इंसानों को कमजोर पैदा किया है, खुलकल इंसान ज़ईफा, हमने इंसान को बहुत कमजोर पैदा किया है। जब उसको अल्लाह की तरफ से नेमतें मिलती है तो इतराता है, और जब जरा अल्लाह खींचते हैं तो मायूस हो जाता है। जरा अल्लाह हालात ले आवे तो एकदम ढेर हो जाता है, ढीला डस हो जाता है, बावेला करने फिरता है। और जरा अल्लाह उसको दो ढीला छोड़ दें तो काज चौड़े करके चलता है। अल्लाह कुरान में इसको जिक्र करते हैं कि ये अगर अल्लाह उसको दे तो ये ऐसा हो जाता है, और अल्लाह जरा ले लें तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, इससे बर्दाश्त इंसानों से बर्दाश्त नहीं होता। सर के दो भाई हैं, साथ में रहते थे, लेकिन एक मालदार हो गया और एक बेचारा गरीब रह गया, काम साथ नहीं करते थे। अब मालदार गरीब से कहता है, मैं तो मेहनत करनी पड़े, तो वो ये समझता है कि मेरी मेहनत से मुझे मिल गया। तो अपने सगे भाई के लिए जो आज तक अच्छे अंदाज से बात करता था, अब अपने भाई के लिए लहजा बदल देता है, अपने माँ बाप के लिए लहजा बदल देता है। माँ बाप ने मान लो गरीबी की हालत गुजारी और बेटा मालदार बन गया, तो माँ बाप के साथ लहजा बदल जाता है इसका, कि ये इंसान ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ लहजा बदल जावे, सगे भाई के साथ लहजा बदल जावे। हाँ, ये शक्लें बनती है, और हम इस सबको हम ये शक्लों को दुनिया में देख रहे हैं कि इंसानों से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा खासा आदमी जो नॉर्मल होता है और वो वर्जिश करने जाता है, जिम में जाता है, छह दिन में यूं चलता है, यूं अरे भाई क्या हुआ इसको, छह दिन से जिम जाता है इसलिए ऐसे ऐसे चलता है, छह दिन का जिम इसके हाथ चौड़े कर देता है। अगर खूबसूरत है तो उसके अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, उसमें कितने गुनाह करता है, खूबसूरती में गुनाह करता है। और मेलो को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था तो वो अल्लाह की ऐसी नाफरमान बनी कि मर्द मर्दों के साथ बुराई में लगते। वहाँ कैप्टन एक है तो कैप्टन में वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे वहाँ मर्द मर्दों से शादी करते हैं, वो बुराइयां करते हैं, कि खुशहाली उनकी बुराइयों का जरिया बन गई। अल्लाह पाक ने अलग अलग शक्लों में इंसानों को रखा होता है, वो शक्लें बाज़े मर्तबा आदमी को अल्लाह से गाफिल कर देती है। तो सबसे पहला तकाज़ा हर एक से होता है कि हम इसका इस्तेहज़ार करें, अल्लाह का ध्यान करें कि ऐसा तो नहीं हो गया कि नेमत में मेरी अल्लाह की तरफ से सुस्ती हो गई है, गफलत हो गई है, कोताही हो गई है। हाँ, वरना हम इस दुनिया में तो आए थे भाई फ़कीर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, और इस दुनिया से हम तो फ़कीर ही चले जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हाँ, हम आए थे तो किसी ने कपड़े पहनाए थे, और जाएंगे तो कोई कपड़े उतार लेगा, खाली हाथ जाएंगे। तो मैंने इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ किया है, मैंने अपने लिए क्या किया है? मौत अचानक आ जाती है, और मौत यकीनी चीज़ है, मौत पर हक है। अल्लाह का इनकार करने वाले दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन मौत का इनकार किसी ने नहीं किया। तो मौत आना भी यकीनी है, और दूसरा अचानक आना भी यकीनी है। कब किसकी आ जाएगी हमें नहीं पता। हम कितने अच्छे माहौल में भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस साल हमारी 15 शाबान में किसकी ज़िंदगी लिखी हमें नहीं पता है, किसकी पूरी हो गई वो भी नहीं पता है। हज़रत शेख ने वाक़िया लिखा कि बाज़े लोग घर बनाते हैं खुशी के साथ, हालांकि उस साल उनका नाम मुर्दों में आ चुका होता है। बाज़े लोग शादियाँ करते हैं, लेकिन उनका नाम उस साल के मुर्दों में आ चुका होता है। बाज़े लोग अकीक़े और वलीमे में मज़े करते हैं, लेकिन उस साल उनका नाम मुर्दों में आ चुका होता है।
हमारी मस्जिद में एक हाजी साहब ने खेत में बंगला बनाया, उनसे पूछा क्या बात है, क्या बस अब मैं फारिग हो जाऊंगा और फारिग होकर अब मैं सुकून से जीऊंगा, वहां वहां रहूंगा। जिस दिन उनकी ओपनिंग थी उसे इतवार थी, इतवार को ओपनिंग थी और इनका इंतकाल हो गया। मेरी मस्जिद की बात, ओपनिंग के दिन इंतकाल हो गया। हसरतें की हसरतें रह गई। हमारी मस्जिद में एक हाजी साहब ने अपने बच्चों की शादी 31 दिसंबर में रखी। लोग 31 दिसंबर में रखते हैं फंक्शन ये वो सब, तो उसे 4-5 दिन पहले अपने बच्चों के खरीदे में गए, 4-5 दिन, 50 साल के थे हाजी साहब, खरीदे में गए और अल्लाह के शान मॉल में थे, मॉल में, और इस्तिंजा का तकाजा हुआ कि इस्तिंजा करना है। मॉल वाले ने कहा यहाँ तो नहीं है, लेकिन सामने जो बिल्डिंग बन रही उसमें फारिग हो, वहाँ गए। वो अभी कच्चा काम हो रहा था, अभी पूरी बिल्डिंग बनी नहीं थी, तो इस्तिंजा टॉयलेट जैसा एक ब्लॉक उनको नजर आया, तो दरवाजा खोलकर अंदर गए, बहुत तेज पेशाब लगी थी, तो वो तो लिफ्ट का सुराख था, तो ऊपर से गिरे नीचे। 3 दिन बाद उनके बच्चों की शादियां थी और ये हॉस्पिटल में चले गए। 3 दिन बाद उनका जनाजा उठ गया, शादी के दिन उनका जनाजा उठा और शादी के दिन बच्चों के निकाह भी हुए। अल्लाह का निजाम होता है, आदमी नक्शे बनाता है यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे, लेकिन मौत उसके करीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इतना भरोसा नहीं है कि मैं एक सलाम फेराऊं तो दूसरे सलाम फेरा सकूंगा या नहीं फेरा सकूंगा, उससे पहले मुझे मौत पकड़ लेगी। इतना आदमी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आदमी इस दुनिया में जब मशगूल हो जाता है तो ये ध्यान खत्म हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, या ध्यान कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए किताबों में आता है लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो, कि हमें फना होना है, हमें मर जाना है और अकेले जाना है, और ऐसे अकेले सफर करना है, कोई साथी नहीं होगा। अभी हम देखें, हम सब अब यहाँ बैठे हैं, हम अपने घर के लोगों को दफन करके आए, हम में से किसी ना किसी का कोई ना कोई इंतकाल कर गया, वो भी हमारी तरह बाइस्तदाद लोग थे, जैसे आप लोग बैठे हो, जमीनों वाले होंगे, पता नहीं क्या क्या वाले, मैं तो आपको नहीं जानता हूं, लेकिन ये अक्सर उन्हीं का छोड़ा हुआ होगा, अक्सर उन्हीं का छोड़ा हुआ होगा। वो जब थे तो उनका भी दबदबा था, रौब था, हटो बचो के लोग आवाज लोग से सलाम करते थे, सब कुछ था। अब वो कब्रों में सोए हैं, उनके कब्र के ऊपर कोई जाने वाला है, कोई कब्र पर जाता है? ये तो आप लोग तो नेक हो, अल्लाह का एहसान है कि आप लोग जरूर जाते होंगे, क्योंकि हमारे वहां आदाब में है हर जुमा को कब्र पर जाना चाहिए, तो आप लोग तो जरूर जाते होंगे। लेकिन आज जाने वाले भी नहीं है कब्र पर, उनके घरों में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वापरते हैं, और उनको याद करने वाले भी कोई नहीं है। जिनका खाते हैं, जिनके घरों में रहते हैं, उनको भी सलाम करने वाले कोई नहीं है। हाँ, तो अभी जो मौजूदा नस्ल है उनसे क्या आशा करेंगे हम कि वो हमारे पीछे करेंगे? आज की मौजूदा नस्ल क्या कर रही है? आज की मौजूदा नस्ल तो जीते जी भी सलाम करने को तैयार नहीं। कैसे? अब्बा बूढ़े हो जाते हैं तो अब्बा की भेंचुड़ी कर देते, 1 महीना मेरे घर का ही हो, 1 महीना आपके घर का ही। आपके वहां तो ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन अभी और इलाकों में ये माहौल शुरू हो गया कि माँ बाप की तकसीम हो जाती है, जीते जी तकसीम हो जाती है। कैसे? 1 महीना मेरे घर, 1 महीना उसके घर, 1 महीना उसके घर, 1 महीना उसके घर। हाँ, अब्बा ने घर बनाए हैं और अब्बा उसमें रह नहीं सकते हैं कि माँ बाप की भी तकसीम हो जाती है, 1 महीना खिलाएं। सूरत में एक हाजी साहब मिले, वो कहने लगे हर महीने की 31 तारीख में होटल में खाता हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं एक मरतबा घर में बैठा था, एक भाई दूसरे से कह रहा है आज 29 तारीख हो गई, अब्बा को ले यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे घर तुम्हारी बारिश शुरू हो गई। यूं तो अब्बा कहने, वो भी दूसरा कहने लगा अभी तो इसमें ये महीना तो 31 का है, ये महीना तो वो कहने लगा 31 के महीने की क्यों बात करता है, तूने गए महीने 30 तारीख था, तूने 30 तारीख तक खिलाया, मैं भी 30 तारीख तक खिलाऊंगा। तो दोनों तय हो गए 30 तारीख तक खिलाने का। तो अब हर महीने की 31वीं मैं होटल में खाता हूँ। हाँ, ये हालात है। एक हाजी साहब मेरे पास हमारे गाँव में आए और कहने लगे कि मौली साहब मेरे बच्चे हैं लेकिन खिलाते नहीं है, किसी होटल से मुझे खाना खिलवा दो। फिर एक होटल में ले गया और उसका खाना बनवा दिया कि इसको खाना खिलाना। वो हाजी साहब को मैं देख जानता हूँ, जब उनकी जवानी का जमाना था, सफारी कपड़े पहन कर फिरते थे, सफारी कपड़े, और ऐसी गाड़ी लेकर फिरते थे चमक दमक। लेकिन अब हालात ऐसे बन रखा है कि सब छोकरों के पास चला गया और वो रोड पर आ गए। हमारे इस जमाने में माँ बाप की ये तकसीम हो रही है। अब वो माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। आप सबको अभी कोई पूछे कि तुम इतना क्यों थकते हो, इतना तुम क्यों थकते हो, इतना सारे हाथ पैर क्यों मारते हो, इतने सारे हम हाथ पैर जो मारते हैं, हमें तो 2 रोटी 2 बोटी काफी होती है, इतना सारा थकना का, हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए सब कुछ माँ बाप थकते हैं। तो सबके लिए तो हमने सब कुछ किया, हमने अपने लिए क्या किया? हर आदमी अपना जायजा ले लिया।
हाँ, ये उसूली बात है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आदमी अपने लिए जीना छोड़ देता है। बच्चे पैदा होते हैं तो आदमी अपने लिए, फिर उसके बाद बच्चों के लिए जीता है। किसके लिए जीता है?
बच्चों के लिए।
आप देख लो किसके लिए जी रहे हो, जमीनें किसके लिए खरीद रहे हो, घर किसके लिए बना रहे हो, यहाँ से बम्बई हिजरत क्यों की है? तो अपने लिए करना है, यहाँ बहुत है, लेकिन बच्चों का भावी मुस्तकबिल, तो हमने सबके लिए सब कुछ किया है, हमने अपने लिए क्या किया है उसका जायजा लेने की चीज है। तो ये ना हो जाए कि ये नेमतों में रहकर हम अल्लाह से गाफिल हो जाए, कि हमारी हमारी चीजों में सुस्ती आ जाए, अल्लाह के न करने की चीजें हम बच्चों के लिए कर बैठे हैं, बच्चों की दुनिया बनाने के लिए हम अल्लाह के मुजरिम न बन जाएं। हाँ, कि बच्चों की खुशी में, और ये जब फिक्र नहीं होती तो ये चीजें बढ़ जाती है। किताबों में आता है ना कि बुढ़ापे में तीन चीजें बढ़ जाती है, बुढ़ापे में तीन चीजें खुद ब खुद फितरी तौर पर बढ़ जाती है। कौन सी तीन चीजें जी?
लंबी उम्र, माल कमाने का जज्बा,
समाज को फाड़ देगा, कौम को फाड़ देगा, खानदान को फाड़ देगा, जो करना पड़ेगा सब कर डालेगा, सगे बेटे को भाव मार देगा। हाँ, सीरत में ऐसा मिलता है, हारून रशीद ने अपने बेटे से कहा, बेटा हुकूमत बांझ होती है, बांझ जानते हो ना, ऐसी औरत जिसकी औलाद ना होती हो, ऐसी औरत को बांझ कहते हैं। तो हारून रशीद ने बेटे से कहा, बेटा हुकूमत बांझ होती है। कहा, बात नहीं समझा, कहिए किसी की भागीदारी को पसंद नहीं करती, तू आड़े आएगा तुझे भी पूरा कर देंगे। बाप के सामने बेटा आएगा तो बेटे को भी पूरा कर देंगे। हाँ, अभी हमारे मिडल ईस्ट में एक बादशाह का इंतकाल हो गया, 50 साल उसने हुकूमत की, वो अपने बाप को पलटा खिला कर 50 साल हुकूमत करके गया। जवानी में अपने बाप को उल्टा दिया था उसने और वो खुद कुर्सी पर बैठ गया था। इसके 50 मिसालें दुनिया में मिली। अब्दुल मलिक अपने मरवान अपने बाप को उल्टा कर वो बैठा था बनू उमैया में, इसकी 50 मिसालें मिलेगी कि बाप की कुर्सी उल्टा दी और कुर्सी पर बैठ गया। जिसमें ये जज्बे बन जाते हैं उसको, वो अपना जज्बा पूरा करने में जो करना पड़े उसका खेल खेल लेता है, जो भी करना पड़े। आप देखो जहां जहां कौमों में तोड़ है, इंतशार है, फूट पड़ी है, तो वो बड़े बनने के जज्बों ने सबको तोड़ बोड़ कर तितर बितर कर दिया। बस्ती बसाना खेल नहीं, हजरत जी फरमाते थे, बस्ती बसाना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है, बस्ती बसाना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। बसाने में बड़ी देर लगती है, उजाड़ने में क्या देर लगे, बुलडोजर चला दो। लेकिन जब ये गंदे जज्बे जिंदगी में आ जाते हैं तो वो कोई की रियायत नहीं करते, वो सबको तितर बितर कर देते हैं, तितर बितर। हाँ, तो ये नेमतें जिसके पास होती है उसको इसका ध्यान करना होता है के माल के हासिल करने में। हराम के पता नहीं कितने रास्ते शुरू हो जाते हैं, हराम के रास्ते, मालदार बनने का जज्बे वाला और कुर्सी को हासिल करने का जज्बे करने वाला, वो पता नहीं 50 रास्ते हराम के। अब वो सब करके गया, उसे तो मर जाना है, उसको तो मर जाना है, और उसकी हासिल की हुई चीजें वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन वो चीजें उसकी जहन्नम तैयार कर रखी जाएगी। ये सारी जमीनें हैं दुनिया में, ये भी जमीन और दुनिया में जितनी जमीन है वो आजकल बनी है। अरे जमीन आजकल बनी है जिस पर हम बैठे हैं, कब की बनी हुई है? आदम अलैहि सलाम के जमाने से जमीन तो यहाँ की यही है। ये कब से है जमीन? ये जमीन और दुनिया में जितनी जमीन है वो सब कब से है? आजकल बनी है। अरे बोलो कब से है वो? आदम अलैहि सलाम के जमाने से, वो तो वहीं की वहीं रहती है, धनी बदल जाते हैं, और धनी इसके बाद धनी जन्नत में जाएंगे, इसके बाद धनी जहन्नम में जाएंगे। कैसे? जब मान लो हमारे अब्बा की जमीन थी, जब वो उसके मालिक बने तो उन्होंने जिसका जिसका हक लगता था वो अदा किया तो उनके लिए राहत है। उसके बाद हम मालिक बने, मान लो अब भविष्य में भी फिर लोगों का हक लग गया, हम देंगे तो जन्नत बनेगी, नहीं देंगे तो यही जन्नत जमीन मेरे लिए जहन्नम बन जाएगी। कि एक ही चीज लोगों के लिए जन्नत भी बनती है, एक ही चीज लोगों के लिए जहन्नम भी बन जाती है। ये चीजें तो वहां की वहां रह जाती है, फैसले अलग अलग लोगों के खातों में चले जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने नेमतों वालों को दिया होता है, इसमें इन चीजों की गफलत गैर महसूस तरीके से आ जाती है। माल जमाल और कमाल, माल जमाल और कमाल, ये चीजें आदमी को अल्लाह से गाफिल कर देती है। मालदार भी, जमाल भी, कमाल भी, اس لیے اس میں رہ کر اس کو غور کرنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے. قارون کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے, کیا حکم دیا تھا؟ لا تنس نصیبک من الدنیا, کہ تم اس 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 مشغلے میں رہ کر اپنی آخرت بنانا مت بھولنا. اللہ نے بڑا بنایا ہے تو اس میں آخرت بنانا مت بھولنا. ایک تو یہ کہ ہمارے ہم سے لاگو پڑتی چیزیں پوری ہو رہی ہے نہیں پوری ہو رہی ہے اس کا دھیان. دوسرا کہ اللہ پاک نے حضرت کو بڑا بنایا ہے, آپ کا وزن ہے بستیوں میں, قوموں میں, سماج میں, تو جو راستہ آپ لوگے وہ اپنی قوموں کو بھی وہی راستہ اچھا دینا ہے. جو آپ راستہ لو وہ آپ کے بعد والوں کو بھی آپ کو کون سا دینا ہے؟ کیوں کہ کتابوں میں آتا ہے ہر بڑے سے ان کے چھوٹوں کا اللہ حساب لیں گے. کیوں لیں گے؟ کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. قوم, بستیاں, سماج, سوسائٹی, گاؤں کے چودھری, مکھیا, وڈیلوں کے تابع ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. کس کے تابع ہوتے ہیں؟ اپنے بڑوں کے تابع ہوتے ہیں. وہ جیسا کرے گا ایسا لوگ کریں گے. ہاں, لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں ایسے بادشاہوں کا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا تو ہم کیا کریں اس وقت؟ کہ کوئی بات نہیں, فتنہ نہیں کرنا, ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, لیکن ایسے لوگ آئیں گے. ایک بادشاہ ایسا آیا کہ اس نے اپنی جگہ پر اپنی باندی سے لوگوں کی نماز پڑھوائی. باندی کو کہا جا تو امامت کر. ہاں, اس کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہاں, کہ بڑے ایسے بگڑتے ہیں تو ایسا بگڑتے ہیں, تو وہ لوگوں کو اپنی ایسے پیچھے, تو لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. پھر لوگوں نے اپنے نیک ہوں گے, انہوں نے دوہرا لی ہوگی. لیکن خرافات کرنے والے ایسے خرافات کرتے ہیں اور لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو قومیں سماج کے بندھارنوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. دیکھو ہمارے یہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے سماج کا یہ طریقہ ہے, ہمارے سماج میں یہ بات ہے, ہمارے قوم کا یہ ہے, ہماری برادری میں یہ ہے. ایسا ہوتا ہے, وہ ایسا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ رسول کے طریقے دب جاتے ہیں. دیکھو غمی میں دیکھو, خوشی میں دیکھو, اور چیزوں میں دیکھو کہ وہ قومیت اور سماج اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ رسول کا طریقے دب جاتے ہیں. ہم کو تو ایسا کرنا ہے پر ہمارے سماج میں ایسا ہے, ہم کو تو ایسا کرنا ہے پر ہمارے قوم میں ایسا ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں تو اللہ رسول کے طریقے دب جاتے ہیں. تو یہ سارے طریقے چلانے والے کون ہیں؟ کہ ان کے وڈیل ہیں. کون ہیں بولو؟ وڈیل. وڈیل قوم کو جو لے جائیں گے قوم تو بن جائے گی. وڈیل, ہاں, تو وڈیل بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب ہم بستیوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے وڈیلوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا, کیونکہ وڈیل غلط راستے پر جاتے ہیں تو پھر قوم بھی غلط, پھر ان اپنی پوری قوم کو غلط راستے پر لے کر چلا گیا. ہاں, جب اگر ایمان کے سب ٹیڑھی ہو گئی, ایمان ٹیڑھا ہو گیا تھا, ساری سب ٹیڑھی کھڑی ہوگی. یہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے قومیں, سماج, سوسائٹیاں ہوتی ہیں. تو اس میں دو چیزیں بہت بری اثر کرتی ہیں. ایک تو ان بڑوں کی غلط روش, تو پیچھے والے بھی اسی طرح جاتے ہیں. ہم لوگ پوکھرن گئے تھے, تمہارے پڑوس میں ہے یہ پوکھرن, تو وہاں سے جیسر مل گئے چلے میں, تو وہاں سب لوگ مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع, تو مسلمانوں کے مجمع کو ہم نے دیکھا وہ سلام نہیں کرتے تھے, وہ سائیں سائیں کرتے تھے. سائیں سائیں ملیں تو ایسا کرے, سائیں سائیں ایسا کرے. جو تعجب ہوا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ ان کا وڈیل ہے, وہ وڈیل نے ایسا کرنے کو ان کو کہا ہے. پھر وہ وڈیل سے ہم ملنے گئے تو ان کے چہروں پر داڑیاں بھی نہیں تھی کسی کے, نماز نہیں پڑھتے تھے, شام کو تسبیح پڑھنے کو کہہ رہے تھے تسبیح پڑھتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کے وڈیل نے ایسا حکم دیا. ہاں, یہ شیعہ لوگ ہیں نا, یہاں بہت سارے لوگ ہیں, اس میں بہت فرقے ہیں الگ الگ, اسماعیلی, داؤدی, خوجہ اور فلاں اور فلاں سب ہیں. اس میں یہ کہ جو کوئی مر جائے تو اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں, الٹا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. ایک فرقہ ہے, کیوں کاٹ دیتے ہو؟ کہ پیر صاحب نے کہا اس کے لیے. سب مردوں کے کاٹ دیتے ہیں. بھائی کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہو جائے گا. تو کہتے سستا سودا ہے, عادت کاٹ ڈالو. کہ اللہ کے وہاں جائے گا تو اللہ کے وہاں ہاتھ بغیر کا ہوگا, تو الٹے ہاتھ میں ملنے کا سوال نہیں ہے. یہ ان کی غلط بات ہے, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ یہ جسم تھوڑی اللہ کے وہاں جائے گا, یہ تو مٹی ہو جائے گا, اللہ دوسرا جسم دیں گے. یہ اندھشردائیں ہیں, یہ وڈیلوں کے تابع ہے قوم سماج. تو وڈیل ہر آدمی
कोई अपने गांव का वडील है, कोई अपने गांव का मुखिया है, लोग उनके पास इंसाफ के लिए आते हैं। गांव में समाज में कोई बात हो गई तो लोग किसके पास बात लेकर आएंगे? वडीलों के पास। अल्लाह कुरान में वडीलों को क्या कह रहे हैं? बड़ों को, जिन लोग इंसाफ करते हो उनको। कि आदमी दो चीजों में होता है, या तो किसी से मोहब्बत होगी या किसी से दुश्मनी होगी, किसी से उसका दिल का ताल्लुक होगा या किसी से दुश्मनी होगी। तो किसी की मोहब्बत में भी इंसाफ की बात ना छोड़नी चाहिए और किसी के दुश्मनी में भी इंसाफ की बात नहीं छोड़नी चाहिए। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें किसी से खोट पड़ गई तो तुम अब उसके विरोध की बातें करो। ये वडील को अपने ऊपर सीखना पड़ेगा। हाँ, और किसी से मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत में भी ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन ये कौन सा वडील अपने ऊपर लगाम डालेगा जिसके अंदर ये सारी बातों का ध्यान होगा? तो कौमें अपने वडीलों के ताबे होती है। अपने वडीलों के ताबे हैं। दूसरा, हम सब उम्मत है। हम सब कौन है बोलो? उम्मत है। किसी के पेशानी पर नहीं लिखा कि ये खानदान वाले जन्नत में जाएंगे, ये खानदान वाले जहन्नम में जाएंगे। किसी के पेशानी पर लिखा है कि भाई ये न्यू मुस्लिम है, ये जहन्नम में जाएंगे, और ये फला है, ये मोमिन है, ये मोमन है, ये मियां भाई है, ये शेख है, ये घांची है, ये सैयद है, ये पठान है, वो फला है। ये तो अल्लाह ने कुरान में सारी पहचान के लिए बनाया है, ये पहचान ओढ़खाने के लिए। और जाल्ला तुम शाओ बन व कबाइला लितआरफू, कि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह के वहां तो मुत्तकी को देखा जाएगा। अगर अल्लाह के वहां किसी की इज्जत कम हो जावे तो अल्लाह के नबी का सगा चचा अबू लहब चौधरी आदमी था, हट्टा कट्टा घोड़ा मुस्टंडा, मक्के का मुतवल्ली, लेकिन बात नहीं मानी तो उसको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते। और बिलाल हबशी काले कलोटे हैं, बिलाल हबशी काले कलोटे हैं, लेकिन बात मान ली तो इतनी इज्जत मिल गई कि हुजूर ने फरमाया कल कयामत के दिन मेरे ऊंट की नकिल तुम्हारे हाथ में होगी। तो अल्लाह के वहां कैसे कहा? सब नहीं चलता, नसब नहीं चलता, खानदान नहीं चलता, कुछ नहीं चलेगा। तो अल्लाह के वहां तो ये सब देखा जाएगा कि अल्लाह की मंशा पर कौन जिक्र आया है। इसलिए उम्मत को उम्मत बनाने की मेहनत कर रही है। कौम के वडील जो होते हैं वो उम्मत बनाते भी हैं और उम्मत पर ऐसे निकालते भी हैं। हाँ, तो हम सब उम्मत है। हमने किसी बिरादरी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी कौम का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी खानदान का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी इलाके का कलमा, हमने कौन सा कलमा पढ़ा है? अल्लाह और उसके रसूल का, मोहम्मद रसूल। और हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिल जाए, अल्लाह के लिए हमारा मिलना हो, अल्लाह के लिए हमारा जुदा होना हो। हजरत सलमान फारस से आए तो ऐसे घुल मिल गए कि मदीने वाले कहने लगे कि हमको एक लंबे जमाने तक ऐसा लगता था कि हजरत सलमान हुजूर के घर के ही बेटे हैं, उनके घर के आदमी हैं। तो बाद में हमको पता चला कि वो तो मुहाजिरी है। ऐसी अवड़ जवड़ और ऐसे घुल मिल गए कि लोग टुकड़ों में ना तकसीम हो जाए बल्कि उम्मत बनकर रहे। कैसे रहे बोलो? उम्मत, हम सब उम्मत है। और अल्लाह के वहां किसकी कितनी कदर है वो हमें नहीं पता है। तो हमारा कोई रीत रिवाज नहीं, हमारा एक ही तौर तरीका है, वो कौन सा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसके जिम्मे है? कि वडीलों के जिम्मे है। अपने कौमों को उम्मत बनाने के फिक्र हमारी हो, असलियत नहीं होगी, कौमियत नहीं होगी। तो अगर ये हुआ तो फिर हमारा माशरा दूसरों में मुंतकिल होगा, हमारे पास जो है वो दूसरों में जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीने में जो था वो दूसरों में गया, लेकिन जब लोगों को अपनाएंगे तो, और अपनाइयत नहीं होगी तो बेगानगी हो जाएगी, लोग हमारे माशरे को ले नहीं जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको सीने से लगाया तो जहाँ के लोग आए वो मदीने की बातें लेकर गए, लेकिन उनको पराया समझेंगे तो फिर वो हमारी बात लेकर नहीं जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा माहौल बनाया मदीने में कि जब जमातें जाती थी इलाकों में मेहनत के लिए तो वो लोगों को लेकर आते थे, तो मदीने में रहते थे दो दिन, तो तीसरे दिन कहते थे हमको भी मुसलमान बना दो। क्यों, क्या बात हो गई कि हमने इनको देखा कि खुद नहीं खाते हमको खिलाते हैं, जो नहीं पहनते वो हमको पहनाते हैं, हमारा ये करते हैं ये करते हैं, तो हमको अपना बना लिया। अगर ऐसे हैं तो हमको भी इनके जैसा बना दो। तो घुल मिलने से उनका दीन उनमें मुंतकिल हो गया। अल्लाह ने हमें जो दीन दिया है, दीन का माहौल दिया है, लोगों को अपनाने से वो दीन उनमें भी जाएगा। और अगर लोगों को अपनाया नहीं गया तो हमारी बात उनमें मुंतकिल नहीं होगी। और ये सब कौन करेंगे? कौम के वडील, कौम के बड़े। और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम उम्मत को उम्मत बनाने की फिक्र करेंगे। अल्लाह पाक ने हजरत को बड़ा बनाया है तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि नेमतों में गफलत ना हो, और दूसरा ये जितने हमारे मातहत है उनको हमारे जरिए से क्या मिल रहा है वो देखना है, हमारे जरिए से क्या मिल रहा है। आप हजरत का समाज में वजन है। और अरबी में कहावत है, कलामुल मुलुक के मुलुकुल कलाम, कौम के जो बड़े होते हैं उनकी बात बातों में बड़ी होती है, कौम के जो बड़े होते हैं उनकी बात बातों में बड़ी होती है। अपने गुजराती में कहते हैं सौ सुनार की और एक लोहार की। हमारे जैसे लोगों को सौ सुनार जैसे टक टक करना पड़े और आप जैसों का एक हथौड़ा लोहार जैसा करना पड़े। हम मोहल्ले में जाने किसी को समझाने के लिए तो हमको 10 चक्कर काटने पड़े, भाई साहब भाजी साहब आ जाओ मस्जिद में ये। और अगर कौन का बावजन आदमी आप जैसा आदमी किसी के दरवाजे पर चला जाए तो हमको देखेगा, ओ हमारे वडील आए हमारे दरवाजे पर, मस्जिद और जमात के साथ मिलकर गए मान लो किसी के दरवाजे पर, तो अब वो दरवाजे वाला देखे, ओ हमारे हाजी साहब आ गए, हमारे मुखिया आ गए, हमारे वडील आ गए, हमारे चौधरी साहब आ गए। तो सच बताओ वो घर का आदमी मुतवज्जे होगा नहीं होगा? तो हमारे जैसे को तो 10 चक्कर काटने पड़े तो भी वो मुतवज्जे हो ना हो, भाई अभी नहीं जाओ बाद में आना, अभी अभी हम मशगूल है हमारा ये है, तो हमको वापस आ जाना पड़ेगा। और आप जैसे आदमी जावे तो एक टकोरे में वो बाहर आ जाते और तुम कहो भाई हम मस्जिद से आए हैं, तुमको मस्जिद से लेने तो तुम्हारी बात मान ले, सौ सुनार की और एक लोहार की। अल्लाह पाक ने तुम्हारे तुम्हारे बातों में लोहार के हथौड़े का वजन रखा है। अब ये वजन को तुम अच्छा इस्तेमाल करो तो उससे तुम्हारी आखिरत बनेगी। अगर इस वजन का तुमने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तुम्हारी आखिरत इससे नहीं बनेगी। दुनिया में लोगों की वग होती है ना, वग पहचान तो ओढ़खाण, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ओढ़खाण मोटी खाण, अपनी गुजराती में कहावत है ओढ़खाण मोटी खाण। तो लोग ओढ़खाण से अपने काम निकालते हैं। क्या काम निकालते हैं? मेरे छोकरे को देखो नौकरी जाने की है, वो शायद देखो मैं आदमी को भेजता हूँ जरा काम कर दियो, होता है ना ओढ़खाण में लोग काम करते हैं, अपने सोर्सेस लगाते हैं। तो दुनियादार जो लोग होते हैं वो अपनी ओढ़खाण को इन चीजों में वापरते हैं। समझदार आदमी वो है जिस जो अपनी ओढ़खाण को आखिरत बनाने में वापर ले। तवा है उस पर लोग रोटियां सेकते हैं, आपने नहीं कहते ये तवा पर रोटी सेकता है? अपने वहां कहावत है ना, गर्म तवे पर रोटी सेकता है, कोई कुर्सी की रोटी कुर्सी के तवे पर रोटी सेकता है, कोई पैसों के तवे पर रोटी सेकता है, अलग अलग तवे होते हैं उस पर रोटियां सेकते हैं ना। तो लोग अपने अपने रोटियां सेकते हैं। तो समझदार आदमी वो है जो अपने तवे पर कौन सी रोटी सेके? आखिरत की रोटी सेके। अल्लाह ने ओढ़खाण दी है, दुनिया में तो हमारे काम जो मुकद्दर में है वो हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया है और मैं यहाँ का, अल्लाह ने लोगों के आंखों में मेरी इज्जत रखी है, तो अल्लाह मैं इज्जत का इस्तेमाल करूँ और अपनी ओढ़खाण के जरिए से अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करूँ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करूँ। अब गाँव में एक वकील साहब है, पूरे गाँव के लोग कोई भी मसला उसके पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, अब वो सारा गांव उसके चक्कर काट रहे हैं। अब वही वकील अगर दिन की मेहनत में लगे, देखा कि हमारे मोहल्ले की हालत है, बस्ती की हालत है, तो चलो मैं मजेदार जमान के साथ लगूं। अब वकील साहब लग गए, अब वो जो पूरा गांव उसके घर में आता है वो उनके घर पर गया और यूं टकोरा मारा, सलाम वकील साहब बोलो क्यों क्या बात हो गई क्यों आए हो? वो एकदम पानी पानी हो जाएगा। अब वो जो बात करेगा तो सच बताओ उसकी बात लेंगे नहीं लेंगे? क्या वकील साहब की तो 10 मिनट लगी, लेकिन उस 10 मिनट में उन्होंने आखिरत कमा ली, वो घर को अल्लाह से जोड़ दिया। उस घर को कैसे जोड़ दिया बोलो? अल्लाह से जोड़ दिया। एक डॉक्टर साहब है गांव में, वो सारे लोग कुछ भी होता है भाई डॉक्टर साहब ने बोला उन्हें, डॉक्टर साहब ने बोला उन्हें, अब उनका वजन बन गया है। अब सारे लोग डॉक्टर के पीछे फिरते हैं, वो डॉक्टर साहब दरवाजे पर गए, टकोरा मारा, अस्सलाम वालेकुम, बोलो ना डॉक्टर साहब शू काम आई बात हमें, एकदम उसका मान मर्तबा बढ़ जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब उसके बाद पर वो उसके तो 10 मिनट डॉक्टर साहब के लगे, लेकिन 10 मिनट के कुर्बानी में वो घराने का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। कि गांव के वडील, गांव के डॉक्टर डॉक्टर, गांव के मुखिया लोग जिनको भी अल्लाह ने इज्जत दी है वो सारे के सारे, तो उनको अल्लाह ने बात का वजन दिया है। क्या दिया है बोलो? तो हमारी समझदारी ये है कि हमारी इस बात के वजन को हम सही इस्तेमाल करें। एक आदमी के पास तीर काम था, तीर कम थो वो तीर लगाने को जानता है या बंदूक है, तो एक तो शिकार पर लगाना और एक यूं माशाअल्लाह में कहीं लगा देना, तो शिकार में लगा तो उससे शिकार मिलेगा, काम का हो जाएगा। तो हमें जो अल्लाह ने वक्त दिया उसको सही तीर निशाने पर लगाओ। कि का हमारा निशाना क्या है? का हमारा निशाना आखिरत है। हमारा निशाना क्या है बोलो? कि सारी मेहनत हमारी ओरखान से हमारी आखिरत बननी चाहिए। बहुत सारी चीजें वो है जो छोटे लोग नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें वो है जो छोटे लोग नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ये कुर्सी से होती है, बहुत सारी चीजें पैसों से अल्लाह ने बनाई है। हाँ ये दुनियादारुल असबाब है, आंखों के शर्म से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। किससे बोलो? जो लोगों लोग नहीं कर पाते वो काम आंखों की शर्म वाले करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम उमरे के लिए जा रहे थे हुदैबिया में, तो मक्के के लोगों ने हमारे नबी को दाखिल नहीं होने दिया। सब जानते हो ना वो वाकया, तो तो नहीं दाखिल होने दिया था, हमारे में भी क्या रुक गए, हुदैबिया में रुक गए और अहराम खोल दिया। फिर बात हुई कब क्या करेंगे मक्के के काफिरों से, क्या करना चाहिए, मक्के के काफिरों से बात करेंगे। तो कौन बात करने जाए, हजरत उमर को भेज दें रजी अल्लाह को, वो जाकर बात करेंगे, वो गरम पठान आदमी है, हट्टे कट्टे आदमी है, वो जाकर बात करेंगे, भारी भरकम आदमी है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह कहने लगे कि तुम मुझे भेजते हो, मुझे कोई वादा नहीं, मैं जाने को तैयार हूँ, पर मेरे से ज्यादा आंखों की शर्म वाला, जिसकी आंखों की शर्म वहां पड़े, ऐसा आदमी ना बताऊं। तो कौन, मेरी जगह पर हजरत उस्मान को भेज दो रजी अल्लाह। क्यों भाई, वो मक्के के लोग भी सब व्यापारी और हजरत उस्मान भी व्यापारी, लोहा लोहे को काटेगा। हाँ ये बात सही है। तो जिन लोगों ने हुजूर को नहीं दाखिल होने दिया, उनको आंखों की शर्म में उनको दाखिल होने देना पड़ा। हजरत उस्मान गए और आगे लंबी चौड़ी बात की कि आंखों की शर्म में इतना बड़ा काम था, वो उनके जरिए से हुआ, कि आंखों की शर्म से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अपने समाज में कभी कोई बात होती है, कहते हैं भाई तमें जाओ, तमें इन्हें बात करो, भाई दूसरे लोगों का क्यों नहीं करना, ये भोभे उदार आदमी है, ये वडील है, ये आंखों की शर्म वाला है, होता है तमें जाओ। तो इस तरह कहते हैं कि मोहबेदार आदमी, उसके आंखों की शर्म से ऐसे काम होते हैं जो दूसरों की आंखों के शर्म से नहीं होते। तो आप हजरत में अलग अलग किस्म के लोग होंगे, जिनके अपने अपने समाज में अपने वजन है। अब सोचना ये है कि मैं अपने वजन को इस्तेमाल कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, अगर इस्तेमाल किया तो भी मैं मर जाऊंगा, नहीं इस्तेमाल करूंगा तो भी मरना तो है ही, लेकिन अगर इस्तेमाल करके कुछ करके मरे तो आखिरत बन जाएगी, और अगर इस्तेमाल किए बगैर मरे तो भी हमारे साथ वो हमारा मोहबा सब दफन हो जाएगा, लेकिन हमने उससे नफा नहीं उठाया। क्या मतलब इसका, दुश्मन मैं जंगल में गया, जंगल में जानवर ने हमला कर दिया, और मेरे पास बंदूक भी थी और सब था, लेकिन नाना ये तो मैं संभाल कर रखूंगा, कभी काम आएगा। अरे भाई अभी काम लाने की चीज है, अभी ले लेने तो कब काम आएगा। दुश्मन ने शेर ने आकर उसको पकड़ लिया, वो तो मर गया, तो उसकी बंदूक भी उसके साथ दफन हो जाएगी, क्या करने की, उसने पता नहीं कौन से जमाने के लिए संभाल कर रखी थी। ऐसे लोग अपने मोहबे को संभाल कर रखते हैं, पता नहीं कभी काम आएंगे। अरे भाई कब काम आएगा, अभी बाबर ने खुद भला बन कि तेरे पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं, तेरा असर लोगों पर पड़ता है, और लोगों के घरों के चक्कर काट, अपने मोहबे को इस्तेमाल कर, लोगों को अल्लाह की पहचान करा, तो तेरा मोहबा काम आ जाएगा। अगर तूने इस्तेमाल नहीं किया तो तेरे साथ तेरा मोहबा भी दफन हो जाएगा, क्या काम था। हम एक जगह गए तो एक आदमी कहने लगा ये मेरी गुडविल है, गुडविल मैं मतलब मेरी अच्छी छाप है, मैं आज इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो कहा कबर में इस्तेमाल करिए, कहाँ करेगा फिर। वो कहने लगा ये मेरी गुडविल है, ऐसा बोला, यही जुमला बोला, ये मेरी गुडविल है, मैं तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ मेरी गुडविल को, लोग मुझे यूं समझते हैं। अच्छा भाई कबर में वापर और कहाँ वापरोगे, तो फिर कबर में कीड़े वापर लेंगे और कौन वापरेंगे। तो हमारी गुडविल वापरा जानी चाहिए, हमारा सिक्का वापरा जाना चाहिए, हाँ, वरना ये सिक्का अगर नहीं हुआ तो नोटबंदी हो गई तो नोट बदल जाएगी, तो बात पूरी हो जाएगी, वो नोट नहीं चलेगी फिर। हाँ नोटें बदल गई, अब वो 1000 की नोटें लेकर फिरो, 500 की नोटें लेकर फिरो, चलेगी नहीं ये भाई। अभी मोबाइल यहाँ वपराने का जमाना है, यानी वपराया कबर में वो काम नहीं आएगा, वहां की करेंसी बदल जाएगी। इसलिए अपने आखिरत बनाने के लिए आप हजरत को अल्लाह ने मोबाइल वाला बनाया है, तो अपने मोबे को इस्तेमाल करो, और मोबे के इस्तेमाल के लिए बड़ी बात यह है अपने हाथों लोगों को अल्लाह की पहचान करा के जाओ। हाँ मौलाना उमर साहब फरमाते थे रहमतुल्लाहि अलैह कि हम बांझ नहीं मरेंगे। हम कैसे नहीं मरेंगे, बांझ कैसे औरत को कहते हैं, बांझ ऐसी औरत को कहते हैं जिसको बच्चा ही ना हो, अकेली दिन अकेली मर गई, तो हम बांझ नहीं मरेंगे, अकेले अकेले मर गए, मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद, ऐसे थोड़ी मरने का फिर। तो मौलाना उमर साहब कहते थे हम तो लोगों को कमा कर मरेंगे, क्या करके मरेंगे बोलो, अरे बोलो क्या करके मरेंगे, क्या लोगों को कमा के मरेंगे, इसको इसको इसके पास गए, इसको समझा, इसके पास गए, उसको हजारों लाखों लोगों को समझा कर जाएंगे, और लोगों को अपने नामा-ए-अमल में जमा करके मरेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा, जब हम मरेंगे ना तो लोगों के नामा-ए-अमल बंद हो जाएंगे, एक सुभान अल्लाह का भी वो मोहताज हो जाएगा, एक सुभान अल्लाह नहीं बोल सकेगा। लेकिन जो तबलीग में लगा होगा, लोगों को दीन की मेहनत में लगाया होगा, खुद लगा होगा, उसका नामा-ए-अमल बंद ही नहीं होगा। देखो मौलाना उमर साहब चले गए लेकिन नामा-ए-अमल बंद नहीं था, क्यों, वो जितनों को लगा, पूरी दुनिया में 30 साल तक अल्लाह का पैगाम सुनाया, कितने साल तक बोलो, अल्लाह का पैगाम रोज 3-3 घंटे बयान करते थे, और पता नहीं पूरी दुनिया मशरिक मगरिब शिमाल जनूब छान मारा, हजारों लोग उनके हाथ से तबलीग में लगे, मौलाना उमर साहब तो कब्र में चले गए, लेकिन जितनों को वो लगा कर गए हैं वो उनको बख्शिश और इसाले सवाब करे कि ना करे, वो सब उन्हीं के खाते में जाएगा, उनके खाते में जाएगा। देखो नहीं ये आपके यहाँ मौलाना जो आए थे, कौन थे वो जो बड़े आपके थे ना, नजीर अहमद साहब, कि वो कब्र में चले गए, दफ्तर थोड़ी बंद हुआ है, ये तुम जितने करते हो वो उनके खाते में जाएगा। ये तुम यहाँ बैठे बैठे अभी कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो, तुम्हारे छोकरे मौलवी नजीर अहमद साहब ने ऊंट पर बैठकर गश किए थे और हमको तुम्हारे बूढ़े सुनाते हैं मौलवी अब्दुर्रहमान सुनाते थे कि वो रात में फाणस लेकर आवे और कपड़े में अपना थोड़ा नाश्ता लेकर आवे, एक गाँव दूसरे गाँव तीसरे गाँव फिरे हैं, अपना वजन मोबाइल इस्तेमाल उन्होंने किया और राजा भी दुश्मन प्रजा भी दुश्मन और अंधेरों में जंगल में चलते थे वो, और उन्होंने जो कुछ वडीलों को तैयार किया था वो वडीलों से इतनी बड़ी कौम तैयार हो गई, उनको खबर भी नहीं होगी कि कितनी बड़ी वो कौम हो गई, कितने हफीजी कितने मौली साहब कितने मदरसे और क्या क्या भलाई के काम कर रहे हैं। वो नजीर अहमद साहब ने दाना डाल दिया, वो आम का दरख्त होता है ना, आम का दरख्त तो डालने वाला तो एक एक गुठली डालता है, उसमें हर साल हजारों आम आते हैं, वो खबर थोड़ी थी उसको कितने हजार आम आएंगे, लेकिन हजारों के हजार हजारों के हजार। वो फिर वो जो गुठली आई उसके दूसरे झाड़ फिर उसके दूसरे झाड़, ये अल्लाह पाक ने कितने बड़े झाड़ खड़े कर दिए, कितने उलमा आपके यहाँ के उलमा गुजरात में खिदमत दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, कितने हाफिज जी कितने मौली साहब, वो एक गुठली में कितने झाड़ थे वो भी मौली नजीर साहब को नहीं खबर। कयामत के दिन मौली नजीर साहब का नामा अमल कैसा होगा, हल्का होगा, इतना भारी भरकम होगा कि उनके जमाने में उन्होंने अपना इस्तेमाल कर लिया, हमें अल्लाह ने मौका दिया है इस्तेमाल होने का, अगर अपना अपना मोहरा इस्तेमाल कर लिया और अपनी गुटली इस्तेमाल कर ली तो हजारों झाड़ उग जाएंगे। इसलिए इस तबलीग में इस्तेमाल होने को अपनी सादत की चीज समझे, ये ना समझे तबलीग तबलीग आई तो बहुत भारी भावी था अमृत पीणु, हाँ अमृत इसको पी लिया तो ये तो शिफा ही शिफा है, अमृत पीणु हाँ तो ये अमृत है, अमृत इसको ले लेना है और लेकर अपने अपने लिए जखीरा बनाकर जाना है। ये जो गश्त किए होंगे, हमने मुलाकातें की होगी, हमारे मुंह से लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए होंगे और हमारे थोड़े से चक्कर से हमारे गश्तों से हमारी मुलाकातों से कल कयामत के दिन वो सब हमारे नामा अमल में आ जाएगा। तो वो करना है, ये इसीलिए आप हजरत यहाँ जमा करते हैं कि अगर ये कर लिया तो आप इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको यहाँ का बड़ा बनाया है, अगर ये आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आखिरत के भी बड़े बन जाओगे। हम तो ये चाहते हैं
जैसे वडीलों के साथ लोग चलेंगे, जब बडिल जाता है ना तो उसके साथ लोगों का चलना आसान हो जाता है, तो जब बडिल जाएगा तो अपने साथ कितनों को लेकर जाएगा, तो मौका हो तो एक मरतबा लगा दिए उस पर कनात ना करो, अब अपने बार बार लगाते रहो ताकि तुम्हारे तुम्हारे जैसे लोग अब आपके साथ चलते रहें और एक कौम तैयार हो जाए, एक टीम तैयार छोड़कर हम मरें। और जब जमात से वापस आओ तो सुस्ती ना करें, हम सुस्ती आ जाती है कि हम तो बूढ़े हो गए माजूर हो गए हम क्या करें, ना ऐसे सुस्ती नहीं करने की, जिंदगी एक ही बार मिली है दूसरी बार थोड़ी मिलेगी और पता नहीं कब पूरी हो जाएगी, इसको इसको वापर कर अच्छी तरह जाना है, इसको ऐसे छोड़कर नहीं जाना। हाँ इसलिए जब भी सुस्ती आवे तो सोचने का कि भाई ये जो भी हाल है गुजर जाएगा और जो करने का है कर ले वरना वो रह जाएगा, आज एक पारा पढ़ना था नहीं पढ़ा तो रह जाएगा, तो वो साथी कहने लगा आज आज रह गए कल पढ़ लूंगा, तो कल दो पारे हो जाएंगे, आज एक पारा नहीं पढ़ सका कल दो पारे कैसे पढ़ेगा तू भाई, तो जिस वक्त जो करने का है कर लेने का वरना वो रह गया तो रह जाएगा। इसलिए शैतान हमको कहीं से भी धोखा ना दे दे कि तू ऐसा है माजूर हो गया बुढ़ा हो गया, ना ना भाई हम तो जवान है, हम तो कैसे है बोलो
जवान
जवान है। हम लोग अभी एक मुल्क में गए आइवरी कोस्ट, तो वहाँ एक पड़ोस के साथी आए थे, पड़ोस से भी जमात आए थे, तो उसमें 80 साल के एक बूढ़े आदमी थे, तो वो जवानों की तरह यूँ दौड़ते भागते थे यूँ जवानों की तरह, मुझे हैरत हो गई, मैंने कहा यार ये 80 साल के जवान कहाँ से आ गए 80 साल का जवान, तो मैंने उनको पूछा आप जवान की तरह भागते दौड़ते हो, कहा बोला ना मैं दो चीजें अपने गणित में गिनता हूँ, तो क्या दो चीजें, कहा मैं 80 साल का हूँ लेकिन मैं अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं कहता हूँ, क्या नहीं कहता हूँ बोलो, कोई पूछता है कितने उम्र है, मैं कहता हूँ मैं 80 साल का जवान, कैसा हूँ बोलो 80 साल का जवान। अच्छा दूसरा का दूसरा मुझे कभी बीमारी आती है तो मैं ऐसा नहीं कहता कमर बहुत दर्द कर रही है मेरे टांडिया बहुत दर्द करते हैं, ऐसा करे ना तो विरोध कमर कमर के हो गए माँ, कभी ऐसा बोलता नहीं, तो फिर क्या बोलते हो, हाँ भाई कमर दुखती है सबकी दुखती है मेरी दुखती है अच्छी हो जाएगी क्या मसला है, माथा दुखा अरे भाई जवान की भी दुखती है मेरा भी दुखा है अच्छे हो जाएगा क्या मसला है, कोई उसको माथे पर नहीं चढ़ाता हूँ, ये माटी है ना माटी उसको अपने पैर के नीचे रखने की होती है, उसको माथे चढ़ा दे तो अपनी कमर बना दे, भाई माटी को ऊपर चढ़ाई माटी क्या बना देगी, का बीमारी को अपने ऊपर चढ़ाया वो तो खाटने में सुबह देगी, तो मैं यूं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है मेरे दर्द हुआ है अच्छा हो जाएगा सबको होता है मुझे भी वो इसमें क्या मानता है, अल्लाह का फजल है 80 बरस का हूँ जवान की तरह रहता हूँ, क्या कहता है बोलो 80 बरस का हूँ जवान की तरह रहता हूँ, तो अपने मन को समझाने का है कि भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बोलो हम सब कुछ कर सकते हैं, वरना दिमाग पर कोई चीज आ जाती है ना दिमाग पर तो आदमी जवानी में बूढ़ा हो जाता है तंदुरुस्ती में बीमार हो जाता है, तो अपने तो 80 साल के भी जवान है कैसे बोलो 80 साल के, हम गश कर सकते हैं, हम मुलाकात कर सकते हैं, हम 4 महीने जा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये जन्म ले लिया तो मैं क्या करूं? तो जाओ, किसी काम के नहीं, होटलों के रह जाएंगे, होटले पर और चौराहे पर बैठकों के रह जाएंगे, वहां गीबतों के अलावा कुछ नहीं होगी, जाएंगे तो जहन्नम का पलिंदा तैयार होगा, क्योंकि लोगों की गीबत हुई है। जब आदमी बैठता है तो हमारे पास ऐसी बातें तो होगी नहीं, तो क्या बातें होगी तेरी मेरी राम तो राम की, वो बातें होगी तो उससे जहन्नम तैयार हो जाती है। इसलिए अपने आप को हर हाल में चलाते रहना है। देखो माँ इब्राहिम साहब 85 वर्ष के हैं, चल रहे हैं। ये मौली इस्माइल साहब देखो वॉकर से चलते हैं, चल रहे हैं। जिन्होंने चलाना तय किया चल रहे हैं, और जिन्होंने अपने आप को माजूर किया वो खाटलों पर पड़े, 50-50 साल की उम्र में खाटलों पर आ गए। और जिन्होंने अभी हाजी साहब का इंतकाल हुआ 95 वर्ष की उम्र में और चलते थे, उनका इंतकाल हुआ मार्च में, इंतकाल से 3 दिन पहले हम लोग मिलकर आए थे, तो चलते फिरते सब व्हील चेयर में इधर उधर भागम दौड़ी 95 वर्ष, 70 वर्ष तबलीग की, 75 वर्ष, कितने वर्ष बोलो, 75 वर्ष। तो अपने आप को हम माजूर, किसी हाल में भी शैतान आएगा किसी रास्ते से, ना भाई तू से जान जाना हो जाए, यहाँ हमारे पास तो आयुज मत, हम तो सब कुछ करेंगे, हम तो जवान लोग हैं, हम कैसे हैं बोलो
जवान।
इसलिए मौलाना उमर साहब जो कहते थे तो क्या करेंगे जी, करते करते मरेंगे, कैसे मरेंगे बोलो, करते करते मरना है। मौलाना उमर साहब फरमाते थे मरते मरते करना है। इसलिए अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने आपको तौफीक भी दी, बड़ा भी बनाया, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो अब इसको पल्ले से बांध लेना है। किसे बांध लेना है? पल्ले से बांध लेना है, मौत से पहले छूटना नहीं चाहिए ये। तो सब नियत कर दो उसके बांधा है उसको बांध कर रखेंगे इंशाल्लाह। इसलिए बार बार चैप्टर लेने भी लगाओ ताकि तुम्हारे साथ एक टीम तैयार हो जाए। कौन हो जाए बोलो,
टीम
तैयार हो जाए। जब जब आप जैसे लोग जाएंगे ना तो आपके वहां से ऐसी टीमें तैयार, आप जो गांव के चौधरी है बड़े हैं जो किसी के साथ नहीं जाते वो आपके साथ जाएंगे। जब वो आपके साथ जाएंगे तो गांव के समाज के वडीलों की विचारधारा बदलेगी, सोच बदलेगी, दीनदार वो बनेंगे। तो हम दुनिया से जाएंगे अच्छे लोगों को अपने पीछे छोड़कर मरेंगे। कैसे लोगों को बोलो, हमारे नबी गए तो अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर गए, उमर फारूक को छोड़कर गए, तो हम भी अच्छे लोगों को छोड़कर मरेंगे। तो हम कब होगा ऐसा, जब अच्छे लोग बनाने की मेहनत करेंगे। ये तबलीग की मेहनत अच्छा बनाने की मेहनत है। एक तो अपनी जात से वक्त लगाते रहना है, और दूसरा जब मकाम पर रहें तो अलग नहीं बैठ जाना, मस्जिद और जमात से जुड़े रहना है, ताकि मोहल्लों की मेहनत में हमारा हिस्सा हो जाए, हमारा मोभे का वपराश हो जाए, हमारी आंखों का शर्म का वपराश हो जाए, हमारे बड़े पने का वपराश हो जाए, और अल्लाह हमें जरिया बना दे अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का। करोगे इसके फिक्र, स्वाद बन करेगा माशाल्लाह। हजरत ने 4-4 मिनट तो लगाए हैं, लेकिन फिर नियत कर लो कि बार बार लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएगा इस साल, कौन लगाएंगे? अरे भाई इस साल कौन कौन लगाएंगे? माशाल्लाह देखो तो हो गया। और बताओ इस बस्ती के लोगों में कौन कौन जा रहे हैं? अभी इज्तिमा से कौन कौन जा रहा है 4-4 महीने इस बस्ती से? जी आप जा रहे हैं माशाल्लाह। और कौन जा रहे हैं? ये सब यही के हैं या बम्बई वाले भी इसमें कोई है? आप सब यही रहते हो या बम्बई में रहते हो? सब यही रहते हैं, सब गांव में ही रहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर माशाल्लाह आज तो इज्तिमा के वहाँ है, तो ये आपके यहीं से जाना चाहिए था। फिर आप लिए नियत ही करोगे यहाँ से जाने की? अबे अभी कल दुआ होनी है, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ये खैर हमारे दरवाजे पर आई है, पहले खैर को हम दिल, इस खैर को हम सीने से लगावें, ऐसे तो हमको तौफीक दे दे। अल्लाह से मांगो तो सही, अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो क्या जाता है। नियत करके अल्लाह से मांगना शुरू करो, कल तक अल्लाह अल्लाह करे कोई शक्ल बन जाए तो वक्त लगा लेना इंशाल्लाह, और अगर अभी शक्ल ना बने तो बाद में लगाना, लेकिन नियत करके कोशिश तो शुरू करो। कौन कौन नियत करता है कि मैं कोशिश करना शुरू करूंगा? सभी करोगे
इंशाल्लाह
तौफीक दे। बाकी अगर इज्तिमा से हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर अभी इज्तिमा से ना हो
तो बहुत जल्दी फिर लगाने की फिक्र करना, ठीक है इंशाल्लाह। और अपना साथ चौधरियों की वडीलों की जमातें बनाओ, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी सारा पूरा साल यहाँ के मकामी अमल में लोगों के साथ जुड़ जोड़ते हुए चलने के फिक्र में, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हजरात को कबूल फरमा दे, तौफीक दे, और अल्लाह आपके इस इज्तिमा को आलमगीर हिदायत का इज्तिमा बनाए।
आमीन।
ठीक, सुभान अल्लाह।